आप मिसाल लीजिए ना कि आपको यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचना है, तो सब जानते हैं कि स्कूल से जाने के बाद आप लोग इस तरफ मुड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, और आगे सीधा चलते जाएंगे। लेकिन आप मुड़ तो जाएं राइट पे, सिटी सेंट्रम फलां फलां पहुँचते जाएं, और आप कहें कि अब मैं जहाँ एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ, तो देखने में मुमकिन नहीं लगता ना। लेकिन हम जहाज़ की जो मिसाल देख रहे हैं उसमें ऐसा ही होता है। तो आइए देखते हैं कि 99% ऑफ ट्रैक रहने के बावजूद जहाज़ अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच जाते हैं। इस सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। पर्दा उठाने के लिए हमें कैप्टन से बात करनी पड़ेगी। हमने अपने एक दोस्त कैप्टन काशिफ से पूछा तो उन्होंने कुछ यूं कहा, कैसर भाई बड़ा ही सादा जवाब है, तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यानी तीन चीज़ों पे जब नज़र होती है तो जहाज़ मंजिलों पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहला पहली चीज़, मंजिल का एहसास। एक लम्हे के लिए भी जहन से ये ख्याल महव नहीं होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। नॉर्वे से पाकिस्तान की फ्लाइट लेकर जाने वाले कैप्टन को एक लम्हे के लिए भी ये नहीं भूलना कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वरना कहीं और पहुंच जाएगा। ठीक है, और याद रखिए कि ये चीज़ इंसान की याददाश्त और हाफ़िज़े के साथ होती है। मुझे एक सेशन जो ये मुहादरात-ए कुरानी में से दिया था, उसमें से कि एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ बैरिस्टर थे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इतने बला के दर्जे के बैरिस्टर थे और वकील थे कि जिस मुकदमे में वो होते थे अपने दलाइल की बुनियाद पर उसको जिता देते थे। और वकील को ये थोड़ी मतलब होता है कि मेरा क्लाइंट हक पे है कि बातें, उसने तो उसके बातों को सच करके दिखाना होता है। लेकिन उनकी एक कमी थी, और वो क्या थी कि भूल जाते थे, भुलक्कड़ थे। एक दफ़ा एक मुकदमा लड़ रहे थे, तो उस मुकदमे के दौरान एक फरीक ने उनको हायर किया जैसे आमतौर पे होता है, तो उसके बाद वो उसके बात कर रहे थे, बहुत पुरजोश तरीके से वो उसका साथ दे रहे थे, और दोनों तरफ से वकील थे। एन मुकदमे के मिडल में जब पहुंचे तो भूल गए कि मैं किसकी तरफ से हूँ, तो दूसरे के हक में जवाब देने लग गए। अब जो उनका क्लाइंट था जिसने इतने पैसे दिए होंगे, वो बैठा देख रहा था, वो परेशान हो गया। एक दफ़ा देखा, फिर उनको पता था लोगों को कि इनको भूलने की आदत है। किस्सा मुख्तसिर के करीब था कि उनके सारे दलाइल को सुनकर दूसरा फरीक जीत जाए। तो जो जिसने उनको हायर किया था, उन्होंने एक पर्ची लिखी उनके नाम की कि जनाब ये वो, आपको सिर्फ याद दिलाना था कि आप हमारे वकील हैं। कहते हैं उन्होंने वो पर्ची उनको उस दौरान भेजी, तो जब उन्होंने वो पर्ची सबके बीच में खोल के पढ़ी, फिर उनको याद आ गया। फिर कहते उन्होंने अपनी बातों का रुख ऐसे बदला कि वो जो बातें की थी ना, अपनी बातें खुद निगेट की कि ये सब कुछ तो एक फ्रॉड था, अब असल बात आपको बताता हूँ, और एंड पे अपने असल वकील को जिता दिया। तो आप किस जगह जाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है? मुझे तरस आता है उन लोगों पर, यकीन करें लुढ़कते हैं पुड़कते हैं नेकियों के नाम पर, किधर जाऊँ किसको जाऊँ, कुछ दिन एक को आजमाते हैं, कुछ दिन दूसरे को आजमाने लग जाते हैं, उससे पढ़ूँ बच्चे से पढ़ाऊँ किससे पढ़ाऊँ, जब तक आपको यकीन ना आए किसी बात का। और याद रखिए कि मेरे यकीन के रास्ते में बहुत सारे दुश्मन होते हैं। मुझे कई बातें याद आ जाती हैं, हर बात पे फिर बातें याद आती हैं, लेकिन हर बात को शेयर करना नहीं चाहिए और वक्त भी नहीं होता और ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन मैं देखती हूँ कि अच्छे खासे ठुके हुए लोगों के दिलों में डाउट्स आ जाते हैं, और शैतान शक के रास्ते से दिलों में ऐसे फिर बेयकीनी के अंधेरे डालता है कि आपको यकीन ही नहीं रहता कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम कर दे। ये दुआ करें कि हमें अपनी मंजिल का एहसास रहे। अगर हमने इस कुरान को और इस्लाम को और दीन के काम को अपनी मंजिल समझा है, तो फिर इसको भुलाएं नहीं। जिस वक्त आप इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, मिसाल आपने कोर्स शुरू किया है या आप में से साथी हेल्प करते हैं, आपको यकीन है कि यही मेरी मंजिल है, अब मैंने यही करना है, तो आप जम जाएंगे। और अगर आपको इसका यकीन नहीं होगा, हर छोटी से छोटी चीज़ आपका रास्ता बने रुकावट बनेगी, छोटी से छोटी चीज़ आपको हिलाएगी, और लोग डायरेक्टली कभी आपको इधर से नहीं हटाएंगे, वो इनडायरेक्टली इस तरह से आपके लिए हालात पैदा कर देंगे कि जिसके बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि आप कब ऑफ ट्रैक हुई। दूसरी चीज़, फ्लाइट प्लान। इसका मतलब क्या है कि किस वक्त क्या करना है, प्लानिंग ही सब कुछ है। मेरा ख्याल है कि अब आप नूरुल्लाह नूर वाले तो इस बात की अहमियत से बहुत अच्छी तरह आगाह हो चुके हैं। जब तक आपके सामने प्लान नहीं होगा, प्लानर नहीं बनेगा, कभी काम पूरे नहीं होंगे। अब ये बच्चियां भी बैठी हैं ना, स्टूडेंट्स हैं ये, यहाँ रोज़ क्लास लेने के लिए कितने बजे आप लोग आते हैं? 9 बजे, 2:30 बजे तक आपकी क्लास का टाइम है। आप ये सोचते हैं ना कि ये 4.5 घंटे हैं और आपका बस क्लास चल रही है, लेकिन इसके पीछे जो प्लानर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे जब आप ये कोर्स कर लेंगे। कितनी भी बारीक बीनी होती है टाइम टेबल बनाने, प्लानिंग करने, मीटिंग, छुट्टियां, ये वो, कि अगर आपको वो सब करने को मिल जाए तो आप कहेंगे ये कोर्स अच्छा था, जो हम बस 4 घंटे और घर जाके 1 घंटा पढ़ लेते थे तो काफ़ी हो जाता था। तो प्लानर पे नज़र रखना, जिस कोर्स के साथी का प्लानर नहीं है ना, वो कोर्स कभी वक्त पे पूरा नहीं होगा। और मैंने देखा है कि हमारे बेस्ट इंचार्जेस वो हैं कि जो प्लानर को इस तरह चलाते हैं, इस तरह चलाते हैं जैसे जहाज़ की सुइयों को कोई चलाता है। ये मैं खुद दिन रात हर क्लास में देखती हूँ। प्लानर के पीछे हम परेशान होते हैं, और आपने ये जुमला सुना था ना पिछले सेशन में, कल का प्लानर था कि प्लानर से ऐसे डरना है जैसे अल्लाह से डरा जाता है। प्लानर इधर से उधर हुआ, आप ऑफ द ट्रैक हो गए, घूम गए। अब जहाज़ को पता ही नहीं है कि प्लानर कैसे है। अब आप के जहन में ये चीज़ होगी कि फिर ऑफ द ट्रैक क्यों है, इसकी बात आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन दूसरी चीज़ क्या पता चली, फ्लाइट प्लान। इसी तरह आप सब स्टूडेंट्स का भी यही फ़र्ज़ है, अपना प्लान सेट करें। मंजिल है ये कोर्स करना है, इंशाल्लाह करना है। प्लानर के घर के काम, अपनी ज़िंदगी को प्लान कीजिए, प्लानिंग के बगैर काम नहीं होते। आप बच्चों वाली हैं तो भी आप दोनों काम कर लेंगी, और आपका एक बच्चा भी नहीं है आप फिर भी कोई नहीं करेंगी, सुस्तियों और सोचों में पड़े रहेंगे। जितनी देर हम सोचते रहते हैं ना अब क्या करना चाहिए, क्या करूँ, क्या मुश्किल है, उतने में लोग काम करके चले भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, राइट। तीसरी चीज़ है, तीसरी कुंजी कुतुब नुमा, जो सिमत का तयन करने में मददगार होता है। आप इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में आज के दौर में, किबला कैसे देखते हैं जी, शाबाश, कंपस को। कैप्टन काशिफ की इन बातों को जरा अपनी जिंदगी पर लागू करके तो देखिए। गोया आपको सबसे पहले मंजिल का तायुन करना है, पहुंचना किधर है, पूछिए खुद से पहुंचना किधर है, जिंदगी की एंड गेम क्या है। चाहे आप किसी भी किस्म के हालात से गुजर रहे हों, जहन से कभी ये बात निकलनी नहीं चाहिए कि पहुंचना किधर है। जैसे मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, अल्लाह ने उसको स्किल्स दी, वो कुरान की में काफ़ी सालों से इन्वॉल्व है, लेकिन अब दुनिया की स्टडीज़ के पीछे वो परेशान है ना। तो मैंने ऐसे सफ़र के दौरान उनसे पूछा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या है ना, तो उसने ये बताया वो बताया। मैंने कहा ये बताइए कि आपके इन सब्जेक्ट्स के पीछे गोल क्या है। मैंने फिर उसको जो नसीहत की उसका खुलासा क्या था, और एक बच्ची ने मशवरा लिया तो मैंने उसको दिया और उसने उस पर अमल किया, और वो माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुली दुनिया की तालीम ले रही है। लेकिन मुझे यकीन है जिस दिन उसका वो तालीम पूरी होगी उसका फ़ायदा भी दीन को होगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखे बेटा, अल्लाह ने आपको इल्म दिया ना दीन का भी, और आप में स्किल्स हैं टीचिंग की, आप दुनिया का पढ़ें, टीचिंग में जाएँ, आप बच्चों को पढ़ना सीख पढ़ाना सीखें, बढ़ने आगे में पढ़ाना सीखें, कुछ सीखें, ताकि कल अगर अल्लाह ऐसे इसबाब बना दे कि आपको ऐसा स्कूल बनाए तो टीचर्स बाहर से लेने की बजाय आपको लिया जाए, आपका भी फ़ायदा, स्कूल का भी फ़ायदा। तो याद रखिए, जो अब आप पढ़ रहे हैं कुरान सिखा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं कुरान की, और आप जाके टीचिंग में, आप पढ़ने में इकोनॉमिक्स में चले गए, बाद में पता चला बैंक की जॉब ऑफर हो गई, 70 सवाल दिमाग पर आ जाएंगे, फिर करूँ ना करूँ। तो मंजिल पर नज़र रखें, दीन सीखें या दुनिया सीखें। देखिए दुनिया भी दीन ही है, लेकिन हमारा गोल क्लियर नहीं होता, मकसद पे नज़र रखना ये ज़रूरी है। तो ख़ुद से पूछिए पहुंचना किधर है, ज़िंदगी की एंड गेम क्या है। चाहे आप किसी भी किस्म के हालात से गुजर रहे हों, जहन से कभी ये बात निकलनी नहीं चाहिए कि पहुंचना किधर है। और हम सब की दुनिया में मंजिल क्या है बताइए, मुसलमान उम्मत होने का बेहतरीन हक अदा करना, और अल्लाह की रज़ा को पाकर आखिरत में जन्नत को पा लेना। इससे अलग कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, वो फिर बस एक किस्म का वो ख़ुद को इधर से उधर करना है। पैसा मंजिल नहीं हो सकता, याद रखिए। पैसा उनको भी उतना ही मिलता है तकरीबन जो घरों में छुट्टियों में बैठे हुए हैं, जो बेचारे असाइलम के लोग हैं। कितना को फ़र्क है असाइलम वालों को, या किसी सिक लीव पे बैठे हुए को, या किसी भी आम इंसान को गवर्नमेंट जो देती है, या जो मेहनत करके लोग कमा लेते हैं, कितना को फ़र्क है। सब खाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब असाइलम पे चले जाएं, मैं नहीं कहती कि झूठ बोल के गवर्नमेंट से पैसे खाएं। कहने का मतलब समझें कि जिस बंदे ने अपना कैरियर बनाने में 10 साल लगा दिए, वो भी वही रोटी खा के सोता है कि जो असबाब और हालात के ना होने के बावजूद एक शख्स स्ट्रगल कर रहा है तो खा रहा है। तो गोल पैसा तो नहीं हो सकता। पैसा तो जितना ज़्यादा होता है उतना ही बंदे का दिल छोटा होता है। आगे देखिए, मंजिल वाजे हो तो रास्ते की दुश्वारियाँ, ये भी लिखिएगा, मंजिल वाजे हो तो रास्ते की दुश्वारियाँ, रुकावटें और स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं कहते। जगह छोड़ दीजिए अपने नोट्स में, अपने हाथ से लिखिएगा, लेकिन कैसे, सोच सोच के। अपने हालात पे नज़र रखिए, फिर कहिए कि मंजिल वाजे हो तो रास्ते की दुश्वारियाँ, रुकावटें और स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं होते। स्पीड ब्रेकर क्या होते हैं? जो हमारी नेकियों की तरफ भागने की स्पीड कम करते हैं। वो कहते हैं, नहीं बस इतना ही बहुत है, हफ्ते में एक दिन बहुत है, बस घर से कर लो, बच्चों को देखो, सास ससुर को देखो, मियाँ की खुशी करो। वो हमारी मंजिल तोड़ देते हैं। शाम के कोर्स में एक सिस्टर ने शेयरिंग की कि मैंने बड़े जोश के साथ जाके बताया कि सूरह फातिहा में ये सीखा है, तो मेरे मियाँ ने मुझे आगे से ये कह के ठंडा कर दिया कि नहीं, पहले सास ससुर को देखो, वो बीमार है। अब आप देखिए, तो क्या वो फिर रुक गई? वो अगले दिन क्लास में थी, तभी तो सुना रही थी ना, तो उन्होंने उस चीज़ को एडमिट कराया, उनको बताया, थोड़ी सेटिंग कर ली, करी कि मैं आऊँगी, मुझे पता चल गया कि मुझे यही चाहिए था, इसी के लिए मैं तड़प रही थी। तो इंशाल्लाह सास ससुर की भी खिदमत के साथ सब कुछ होगा, जो घर में रह के नहीं करते वो बाहर वालों बाहर जाके कहाँ बहाना बनाएंगे। असल बात यह है कि आपको खुद यकीन हो। मंजिल का इल्म होने से मुराद ये कमिटमेंट है कि मंजिल पर पहुँचना है, ये भी लिखिए। बाज़ लोग मालूम को काफ़ी समझते हैं, मालूम तो हम सबको है कि जन्नत में जाना है, लेकिन मंजिल पे पहुंचना, आपको पता है कि यहाँ से 3 घंटे दूर एक शहर लिलेहमर है, या जो भी उसका नाम, पता तो आप सबको भी है, गूगल को भी पता है, याहू को भी पता है, आपके जीपीएस को भी पता है, लेकिन पहुंचता कौन है? जिसको यकीन है कि आज शाम से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। घर से निकलता है, ट्रेन में जाता है, बैठता है, करता कराता है, तो पहुंचता है ना। तो पता होने में और पहुंचने में बहुत फ़र्क है। यही बात मैं आप सबसे कहूंगी, सबको मालूम है कि जन्नत 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 लेनी, जन्नत के दर्जे, जन्नत मुश्किलात में ढांपती गई, खुफ्फतिल जन्नत बिल मकारे, जन्नत की कीमत नफ्स है, जन्नत की कीमत माल, सबको मालूम है। पहुँचेंगे कौन? जो पहुँचने के लिए कुर्बानियाँ रास्ते की। मैं सोचती हूँ, जब इंसान अपनी डेथ का डे सोचे ना, जिस दिन डेड खत्म, टाइम्स अप, हैंड्स अप, स्टॉप हेयर, लीव हेयर, आप में से अभी भी किसी, सबके पेन ले लिए जाए कि ख़त्म, इससे आगे आप नहीं लिख सकती, फिर आप कहेंगे हाय थोड़ा सा और लिख लेती, कुछ और नंबर आ जाते। पेपर्स में हमेशा रोना ही होता है स्टूडेंट्स का कि लिखा नहीं गया पूरा, कुछ छूट गया। तो आज वक्त है, कल नहीं रहेगा। चूँकि आपके मंजिल पर पहुँचने का मतलब बहुत से दूसरे लोगों का भी अपनी मंजिल मुराद पर पहुँच जाना है, यानी जब आप पहुँचते हैं ना मंजिल पर, तो फिर बहुत से दूसरे लोग भी पहुँच जाते हैं। अब इन्होंने मिसाल दी है शौकत खानम हॉस्पिटल की, ज़रा सोचिए, इमरान खान का शौकत खानम हॉस्पिटल की मंजिल पर पहुँच जाने का लाखों लोगों की ज़िंदगी में क्या मतलब है? कितने ही लोग हैं जो आपकी बदौलत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपकी कामयाबी आपके अहले खाना, दोस्तों, अजीज़ों और प्यारों की ज़िंदगी में क्या आसानियां ला सकती है? इनकी मंजिलों को कितना करीब कर सकती है? बात वाज़ेह, यानी अगर वो हॉस्पिटल ना बनता, ना बनाया जाता, तो आज जितने कैंसर के मरीज़ वहाँ से फ़ायदा लेते हैं, वो रुल खुल जाते। अल्लाह सबब बनाता, ये ना बनता, कोई और बन जाता, लेकिन बना तो फ़ायदा हुआ ना। और अब भी कहते हैं कि वहाँ अपॉइंटमेंट्स दे दे के कैंसिल हो रही हैं, कि हमारे पास आपसे भी बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तो अभी आप वेट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट अवेलेबिलिटी के लिए कॉल करेंगे। हालांकि कैंसर का मर्ज़ टाइम बाउंड होता है, जल्दी पकड़ ले तो जान बचने की उम्मीद ज़्यादा होती है बात की नस्बत। अब वो नामुमकिन चीज़ थी ना, अगर वो कहता हो नहीं सकता, मुश्किल है, पाकिस्तान में ये नहीं वो नहीं, चले तो रास्ते बनते ही गए ना। तो अब वो एक हॉस्पिटल बनना उस बनाने वाले के लिए ऑनर नहीं, जिनकी ज़िंदगियां बच रही हैं उनके साथ है ना। इस बात को अब आप अपने ऊपर लीजिए। आपने ये इल्म के लिए रास्ता चुना है ना, दीन का रास्ता, इल्म का रास्ता, ज़ाहिर आपको लग रहा है आप आ रहे हैं, लेकिन आपके पीछे इसी गाड़ी की सीट में आपके बच्चे भी बैठे हैं, इसी के साथ वाली सीट में आपके शौहर भी बैठे हैं या बैठेंगे। औरत घर का घर में क्या किरदार रखती है? जैसे गाड़ी में स्टेयरिंग, जब स्टेयरिंग दीन की तरफ चलता है ना, तो शौहर और बच्चे ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। और अगर आप स्टेयरिंग पे बिठाकर किसी ऐसे बंदे को जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ क्या बन जाए कि आपने लोगों को क्या करना है, बाजार लेकर जाना है, खिलाना है, कमाना है, तो सारे उधर ही पहुंच जाएंगे। बच्चे भी मादा प्रस्ती हो जाते हैं, जब दिन रात माँ भी कमाती है तो बाप भी कमाता है। तो लिहाजा खुलासा क्या है बात का, कि मेरे और आपके किए हुए फैसले सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं इफेक्ट करते, मेरे साथ वालों पे भी करते हैं। फिर दूसरी चीज़, मंजिल के वाज़े यकीन के साथ साथ आपको फ्लाइट प्लान चाहिए। आपकी मंजिल वाज़े है, अच्छा फ्लाइट प्लान दिखाइए, इसकी क्या ज़रूरत है, बस पहुंच जाएंगे। जी हाँ, फिर आप किसी जजीरे पर क्रैश लैंडिंग ही करेंगे, कई साल जंगली जिंदगी से के लुत्फ़ उठाएंगे, फिर कहीं से मदद पहुंचेगी और 20 साल बाद आप मंजिल पर होंगे। मेरे दोस्त, आपको 20 साल बाद नहीं, सही वक्त पर मंजिल पर पहुंचना है। तो किधर है प्लान? नहीं है तो जान लीजिए कि प्लानिंग में नाकामी दरअसल नाकामी की प्लानिंग है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये नूरुल्लाह नूर वालों के साथ पूरा सेशन इस पे हो चुका है, हु फेल्स टू प्लान, जो प्लान करने में फेल हो जाता है, ही प्लान्स टू फेल। समझ आ गई ये बात? जो प्लानिंग करने में फेल है ना, नाकाम है, उसने नाकाम होने की प्लानिंग कर ली है, यानी प्लानिंग के बाद कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। आप दिन रात बसों, टैक्सियों, वैगनों और रूट्स को देख लीजिए, हर जगह प्लानर्स ही होते हैं, तो मिनट मिनट के फ़र्क से बसें आती और जाती हैं। दुनिया में भी ये चीज़ है, दीन में भी यही चीज़ है। बग़ैर प्लान के आप किसी काम के नहीं, मंजिल के हसूल का कोई चांस नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में आप बड़े लकी हैं, ये लोग लक का नाम लेकर भी बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। तो जनाब, लक भी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है जो तैयार होते हैं, तो चले तैयारी का ही प्लान बना लीजिए। अब लक क्या है, यहाँ हम लक को ब्लेसिंग कहेंगे, क्योंकि लक कहना भी कुछ संदीदा लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे फिर हिस्ट्री में कुछ ना कुछ स्टार्स का असर दिखता है, कि स्टार्स अगेंस्ट है कि नहीं है, डिजास्टर्स वगैरह, तो लक नहीं हम बोलते। आप किसी को, खुद को, किसी को ये ना कहा करें कि आप बहुत लकी हैं, यू आर सो लकी, नहीं, आप क्या कहें, यू आर सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। ठीक है, तो प्लान कैसे इसका होगा, ज़िंदगी को प्लान के मुताबिक गुजारने में कितना मज़ा है आपको इसका भी अंदाज़ा भी नहीं है। जब एक प्लान नाकाम हो जाए तो दूसरे प्लान पे काम कीजिए, हत्ता के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएं तो भी एक और प्लान बना लीजिए, चाहे वो प्लान क्रैश लैंडिंग का ही क्यों ना हो। बात समझ आ रही है? प्लानर वन भी होता है, प्लानर ए होता है, फिर एक प्लानर बी होता है। बी क्या होता है कोर्सेज में? बैकअप प्लान। हर वक्त हर साथी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये है आज का ऑडियो लॉग और सब कुछ, लेकिन ये ना चले वो ना चले तो बी प्लान ऑलवेज रखें, वक्त के हिसाब से, मौके की मुनासिबत से, वक्त ऊपर हो गया, वक्त नीचे हो गया, माइक बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, आप खुद बात करना शुरू कर दें, तो प्लान भी बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी चीज़ क्या है, कुतुब नुमा। ये कुतुब नुमा जिसका काम सिमत दिखाना है, दरअसल आपकी ज़िंदगी के असूलों, जाबतों और कदरों का नुमाइंदा है, यानी आप अपने असूलों पर कितने जमते हैं, आपके जाबते यानी आपके लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कदर क्या होती है, यानी आपकी प्रायोरिटीज़ कह लीजिए इसको। जब भी आप रास्ते से हटने की कोशिश करेंगे तो आपकी अकदार और असूलों का ये सिमत शनास कहते हैं, डायरेक्शन या जो भी उसकी रूट होता है उसको डिटेक्ट करने वाला, डिटेक्टर कह लीजिए, आपकी रहनुमाई करेगा, या आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में दोस्ती अहम है या फिर ना। कुछ लोग हैं सिर्फ दोस्तियां करते रहते हैं, बाज़ फिरते रहते हैं। रिश्ते अहम हैं या अशिया, अल्लाह की दोस्ती अजीज़ है या गुनाह की दोस्ती। आपके सिमत नुमा में आप जो चाहें फीड कर सकते हैं। कुछ लोगों के सिमत नुमा में चार सिमतों के नाम कुछ इस तरह हो सकते हैं, यानी कुछ लोगों के नेविगेटर जो है ना, उसमें चार ही बस डायरेक्शन होती हैं। कौन सी? आप तो कह देंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मुझे पता था ये सोचेंगे। ये तो वो है ना जो असल में आपके लिए बना हुआ नेविगेटर, कंपस। लेकिन लोग अमूमन चार सिमतों की तरफ दौड़ते हैं। नंबर एक, फायदा, प्रॉफिट, बेनिफिट। नंबर दो, पैसा, मनी। नंबर तीन, ताकत, जिसको आप, ताकत को आप कह लीजिए अथॉरिटी, प्रेस्टीज या कोई भी समर पावर, बिल्कुल पावर। और चौथी चीज़ है मज़ा, इन्जॉयमेंट, टेस्ट। अब मुझे बताइए, जो फ़ायदे की तरफ भागेगा उसको फ़ायदों की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो पैसों की तरफ जाएगा वो पैसे में, जो ताकत है वो सियासत में चला जाएगा, जो मज़े में है वो एक हो रेस्टोरेंट से निकलेगा, दूसरे में एक मॉल से निकलेगा, दूसरे में मज़ा बहुत आता है। अब आप अपनी चार सिमतों के नाम खुद लिखें, आपको क्या चाहिए, ये आपका काम है। अपने नोट्स में जगह छोड़ दें, आज जाकर घर बैठकर अपनी चार डायरेक्शंस लिखें, फिर उसका बैलेंस, ये आपको सुकून देगा। आमतौर पे कुछ एथिक्स होते हैं जिसको आप कहना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स है ना, तो उसमें चार चीज़ें होती हैं, मोहब्बत, सच्चाई, दोस्ती और इंसाफ। लव, ट्रूथ, फ्रेंडशिप और जस्टिस। बस इतना याद रखिए कि ये चारों सिमतें ही किसी शख्स के फ्लाइट प्लान और मंजिल की आईनादार हैं। क्या पता चला कि आप जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, वैसे ही जिंदगी बसर करेंगे। आप कंफ्यूज मत हों, बात दरअसल ये है कि आपकी मंजिल पहली चीज़ थी, फ्लाइट प्लान दूसरी चीज़ थी, और सिमत नुमा यानी आपका कंपस, इनका आपस में हम आहंग होना ही सच्ची कामयाबी की जमानत है। मंजिल का बामकसद होना आखिरी अहम बात है, जिसे कहे बगैर इस कहानी को ख़त्म करना नुकसानदेह बल्कि गुमराह कुन भी हो सकता है। कहते हैं, मैंने एक साहब से पूछा, मंजिल क्या होती है? मंजिल, क्वेश्चन, जवाब मिला, छा जाना और दुनिया को जेर करना। इन्होंने पूछा, फ्लाइट प्लान क्या होता है? कहा, प्लान ए अंडर वर्ल्ड, प्लान बी स्मगलिंग और प्लान सी चोरी, यानी गैंग का एक रुख किया। पूछा, सिमत क्या है आपकी? कहने लगे, बेईमानी, हिर्स, बेरहमी और मौका परस्ती। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इस गेम में कौन सी चीज़ मिसिंग है, और मिसिंग है मकसद। आपका जवाब सही है, मकसद से मुराद पाना नहीं, देना है। आप दुनिया को देते कितना है? पाया तो वो पाया, खाली हाथ आने से खाली हाथ जाने तक के दरमियानी सफर में आप बस एक ही काम कर सकते हैं। खाली हाथ आए थे ना दुनिया से, तो खाली हाथ जाएंगे, ठीक है ना? बीच में एक ही काम करना है, और वो क्या? जो कुछ मिले उसे आगे दे। एक कहानी फिर कभी सुनाऊंगी कि एक बादशाह था तो तारीख में, तो जब वो मरने लगा तो उसने कुछ फरमाइशें की थी, उसमें से एक ये थी कि मेरा जनाजा उस रास्ते से गुजारना जहाँ मेरी सल्तनत है, और मुझे वहाँ से लेके जाना जहाँ मेरा माल है। असल में वो लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि देखो, मेरी बादशाहत मुझे मरने से नहीं बचा पा रही, मेरा माल, मेरे बच्चे सब धरे के धरे हैं, और मैं अकेला खाली हाथ कब्र में जा रहा हूँ। मंजिल वाज़े, फ्लाइट प्लान का कमाल, और सिमत नमा की नफ्स पर हाथ होने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मंजिल के। लेकिन ये कैसी मंजिल है जिसका कोई मकसद नहीं? मंजिल वो है जिस पर पहुँचने से अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, जहाँ पहुँचने से इसकी मखलूक की ज़िंदगी में सुख आए, जिसे पाने से उसकी बसाई हुई कायनात में ज़रा सी बेहतरी आए। मंजिल वो है जहाँ पहुँचने के बाद आप मालिक के रूबरू जाकर ये कह दें कि देखो मौला, थोड़ा ही सही, मैंने अपने ज़मीन में रहने का हक अदा कर दिया। ये है कामयाब बंदा, ये है असल में मंजिल की तलाश, कि ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा के साथ जीते हुए उसके बंदों को नफ़ा देते रहें, ताकि कल जब अल्लाह से मुलाकात हो तो कह सकें कि अल्लाह ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो कर सकी वो करके आई। फिर आप ख़ुद अपने से चंद सवालों पे आज की बात को पूरा करें। कि आपकी मंजिल क्या है, आपका फ्लाइट प्लान किधर है, आपकी सिमत का तायुन करने वाले वो चार रहनुमा असूल कौन से हैं। मुझे इन तीन सवालों का जवाब चाहिए और जवाब में आपको क्या मिलेगा, वो सब कुछ जो आपको चाहिए। मुझे इतना यकीन कैसे है, इसलिए कि आपकी चाहत बामकसद है, यानी आप करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे ज़रूर करवाएगा। तो क्या पता चला कि जो लोग खुद प्लान नहीं बनाते उनको दूसरों के प्लान पे चलना पड़ता है, जिनकी अपनी मंजिल नहीं होती फिर उनको उधार में दूसरों की मंजिल लेनी पड़ती है, और जिनकी ज़िंदगी फोकस्ड नहीं होती वो एंड पे कहीं नहीं पहुंचते। दुनिया में भी ऐसे ही है, आप सारा दिन वॉन्डर ब्लाइंडली की सूरत में गाड़ी चलाते रहे, इधर से उधर उधर से इधर, बिलाखिर आप थक जाएंगे, फिर आपको खूबसूरत मंजर भी अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आप किसी एक जगह जाकर पहुंच कर वहाँ से वापस आ रहे हो तो आप खुशी महसूस करेंगे कि चलिए आज हमने ये एक मंजिल तय कर ली। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी कमियाँ दूर करवा दे, हम खुद को पहचाने। कोई सवाल आपके जहन में इस बारे में या कोई बात है तो पूछ सकते हैं। अगर आज का सेशन मिस करते तो क्या महरूम हो जाए, किस चीज़ से महरूम होते हैं? जी एक लफ्ज़ में जवाब देना है बस, आपने बोलते जाइए इधर से। नशीन आप पहले बोले, टाइम पूरा और यूज़ हो, आती जाए बोलते हुए आती जाए, ये मतलब था मेरा। यानी आज की गुफ्तगू हमारे लिए एक रिमाइंडर था, ठीक है। नेक्स्ट,
अपनी मंजिल का ना पता चलता,
मंजिल का पता ना चलता,
मकसद के साथ कैसे जीते हैं,
मकसद के साथ कैसे जीते हैं, ये सीखा।
नेकियों की तड़प ना लगती,
नेकियों की तड़प ना लगती, गुड।
सिर्फ ये दुआ ना करती कि अल्लाह ताला मुश्किलात कम कर दे, बल्कि अब ये दुआ करूंगी कि मेरी हिम्मत बढ़ा।
आमीन। मुश्किल मसाइल की कमी के साथ साथ अज़म के बढ़ने की, हौसले के बढ़ने की दुआ करेंगे। जी नेक्स्ट।
जिंदगी को प्लानिंग के साथ चलाने और डायरेक्शन चेक,
इंशाल्लाह प्लानिंग और डायरेक्शन की अहमियत।
अपनी मंजिल को पाने के लिए आज का वक्त है,
मंजिल को पाने के लिए आज को इस्तेमाल करना।
अपने लिए कंपास में आने का ख्याल,
गुड। नेक्स्ट।
मुझे इस लेसन ने सोचने पे मजबूर किया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है।
जी ठीक है। नेक्स्ट।
अपनी मंजिल को जाना पहचानने के लिए
इंशाल्लाह ताला। जी नेक्स्ट।
अपने एम को जानना और उसके बाद फोकस होकर उसके ऊपर चलना,
मंजिल की तलाश के जो टिप्स हैं और ये कि जो रहनुमाई के लिए जो चार रसूल हैं।
मंजिल बहुत करीब है लेकिन हम प्लान के चक्कर में पड़े हैं।
सही जी, मंजिल करीब है लेकिन हम सोचते रह जाते हैं और मौका हाथ से चला जाता है।
और प्लानिंग बी के बारे में,
शाबाश, प्लान बी हमेशा साथ रखना है।
ये मालूम हो गया कि दुनिया फानी है, इससे दिल नहीं लगाना।
गुड। दुनिया को मंजिल नहीं बनाना, गुड।
मंजिल का एहसास,
मंजिल अचीवेबल है उसको पाने का एहसास, ठीक है। पीछे दे दीजिए। मंजिल, मंजिल और मकसद। जी नेक्स्ट।
कि अगर फोकस नहीं क्लियर होगा तो बंदा कहीं भी नहीं
पहुंच सकता, यानी फोकस को लूज करने वाले इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, कुछ भी एंड पे हाथ में नहीं आता। जी नेक्स्ट।
जी हर बात से अपना मुहासबा करने, यानी हर पॉइंट से अपना मुहासबा करने का मौका मिला, जो अगर ना सुनती तो ना मिलता।
यानी हर नुक्ता अपने मुहासबे का नुक्ता था। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे लिए इन चीज़ों को लेना देना आसान कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। चंद लोगों के घर से कमेंट्स हैं उसको भी शेयर कर लेते हैं। मंजिल का की तरफ नज़र रखना है, सोच सीधी रखनी है, मंजिल तक पहुँचने का तरीका ज़िंदगी प्लान के साथ है, मंजिल का मालूम होना ज़िंदगी का मकसद, मकसद तो पता था پہنچنے کی پلاننگ نہیں تھی. صحیح کہا آپ نے, منزل پر فوکس, دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا, منزل کیا لکھا ہوا, منزل کو زیر نظر رکھنا ہے, مقصد واضح ہوا ہے, اللہ نے دوبارہ یاد دہانی کروا دی, سست نہیں ہونا. اللہ تعالی ہم ساری سب کی دعاؤں کو قبول کرے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ ورڈس کا سوال اپنی کلاس میں چلے جائیں, اور آپ لوگ نکال لیجئے حیات صحابہ کے پہلو, اور نماز میں بھی 13 منٹ ہے, اس لیے آپ کو انشاءاللہ اذان جب ہوگی آپ کو بتائیں گے. عادت ڈالیے ہر کلاس میں, جب بھی اذان ہو جہاں بھی موجود ہیں وہیں اپنا اسٹاپ کر کے آ کے سب مل کے نماز پڑھیں, تاکہ نماز کی جو اصل روح ہے اس کو ہم پا سکیں. جہاں ممکن, جس حد تک ممکن ہو, تو نماز کو اول وقت پہ ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس کون سے صحابی کی کہانی ہے؟ عقبہ بن عامر کی. پیج نمبر سب کے پاس ہے؟ کتابیں ہیں آپ سب کے پاس؟ چلیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت پلے کریں. جس جس کو مل گیا ہاتھ کھڑا کریں. اوکے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
چلیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری.